ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है सोमवार, शिव बाबा का दिन। बाबा कहे एक तरफ सब पूजा करते, खास लोग सोमवार के दिन जाते हैं ना मंदिरों में, शिव बाबा के मंदिरों में। तो बाबा ने कहा एक तरफ सब पूजा करते, दूसरे तरफ तुम पूज्य बन रहे हो। हीरे जैसा बन रहे हो। इस समय बाबा तुम्हें पढ़ाकर हीरे जैसा बना रहा है। दूसरी बात बाबा ने बताई, अभी तक हम कहते हैं ना हम सब मुसाफिर हैं। बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर हूं, तुम मुसाफिर नहीं हो। क्यों नहीं हो? मैं तो आके पुरानी दुनिया में आता, ज्ञान देता और लौट जाता हूं। तुम तो जाते नहीं, तुम तो 5000 साल यहां रहते हो, इसलिए तुम मुसाफिर नहीं हो। तीसरी बात बाबा ने बताई, लोग समझते हैं कि बहुत दान पुण्य करेंगे तो राजा के घर में जन्म मिलेगा, लेकिन वहां धन का सुख तो मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि तन का भी सुख मिले। लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान दान करा करके राजाओं का राजा बनाता हूं, जहां तुम्हें ना कोई रोग होगा, ना कोई शोक होगा, सदा 21 जन्म के लिए संपन्नता रहेगी। और चौथी बहुत मजेदार बाबा ने बात बताई, जो बाबा पर पूरा बलिहार जाते, कहते तन मन धन सब बाबा आपका, मैं भी आपका, जो दिल से सरेंडर करते, उसको बाबा क्या रिप्लाई करता? अंडरलाइन है दिल से। जो बाबा को दिल से सरेंडर करते तो बाबा कहते भले तुम महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो, मेरी याद में रहो। और याद का भी टाइम नहीं मिलता है तो क्या होगा? कई कहते बाबा याद का टाइम नहीं है, तो बाबा ने कहा जब स्नान पर जाते हो तब याद करो, वहां फुर्सत है। तो बाबा रोज भिन्न भिन्न रूप से बड़ी रमणीकता से बच्चों को निश्चय बुद्धि बनाते और संपूर्ण समर्पित करवाते। आज है 13 साल। किसके साथ बैठे हैं? बाबा का साथ। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। आज का प्रश्न है, नई दुनिया में उच्च पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? नई दुनिया में उच्च पद पाना है तो मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। जब हीरे जैसा बनने की बात आती है तो कौन सा गीत बजाओगा? तूने रात गंवाई सोके, दिन गवाया खाके, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। अभी वो भले फिल्में गीत हैं, लेकिन इसका रहस्य, इसका सार तो हम ही जानते हैं। बाबा इन बातों को बहुत गहराई से बताते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन में बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म पान। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है किसका? स्वर्गवासियों का। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तो अभी तो हमारा जन्म कौड़ी जैसा नहीं है, अभी तो हम हीरे जैसा बन रहे हैं। हीरे तो है ही है सब बाबा के, केवल अब घिसाई चल रही है, शाइनिंग आ रही है। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी हैं। ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वो मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो। तुम आकर जाते नहीं हो। एक बार आए सतयुग आदि में, वो लास्ट में जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूं। बच्चे जानते हैं ये सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कर सकता है? हीरे जैसा कोई बना सकता है? द्वापर युग से कितने धर्म पिताएं आए, धर्म गुरु भी आए, महान आत्माएं भी आई, लेकिन सबको हीरे जैसा बना दे, स्वर्गवासी बना दे, इतनी बड़ी सेवा कोई नहीं कर सकता। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है। कौन सी दो चीज याद रहती है? सुख और शांति। बोलने में भी सुख शांति साथ में आएगा। ऐसे किसी को कह रहे तो सुख शांति से तो रह, माना दोनों शब्द साथ में बोले जाते हैं। यहां दुख और अशांति है तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है, माना कम अभी अंत है, ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, तुम ऊंचते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वो प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहां नहीं होती। वहां तो पूरे शहर में एक मस्जिद होगी, पूरे शहर में एक चर्च होगी, यहां हर गली में हर मोड़ पे एक मंदिर मिलेगा। और जितने व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, जैसे देवियों की 9 दिन तक होती है, गणेश जी की 11 दिन तक चलती है, ऐसे किसी के भी इतनी नहीं होती। आधा कल्प भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। कौन सी कला कम होती जाएगी? परसेंटेज कम होती जाएगी। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा नहीं होती। सतयुग त्रेता में ना कोई मंदिर होंगे ना पूजा होगी। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। जितने हमने भक्ति की आधा कल्प इतनी कोई नहीं कर सकता। तो फिर पूज्य भी बाबा हमें ही बनाता है। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको खास भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है। कोई बहुत समय के बाद आता है तो गिफ्ट भी तो अच्छी लाएगा ना। तो बाबा इतने समय के बाद आते हैं, 5000 साल के बाद, तो बाबा कहते हैं कितनी जबरदस्त वर्षा है। परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है। बाहर वालों को समझाओ तो एक बार में तो कोई नहीं समझ लेता है, बार बार उनको समझाना पड़ता है। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं, भारत खंड में तो कितने मंदिर हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, हर मोड़ पे मंदिर मिलेगा। अभी तुम जानते हो ये किसके मंदिर हैं? ये किसके मंदिर हैं? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वो मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहा है। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वो भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। तो असली पुजारी तो हम हुए ना, हम ही पूजा बहुत की तब आकर के यहाँ ब्राह्मण बने। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, सभी इकट्ठे तो पढ़ न सके, तो पहले थोड़े आए, अभी ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े हॉल बन गए। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे वृद्धि होगी, इकट्ठे तो आ न सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे, एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। जो आकर समझो उनको बताना है स्वर्ग के मालिक कैसे बनते हैं, वो आकर के समझो। लेकिन जैसे स्वर्ग के मालिक बताएंगे तो समझेंगे सीधा ही जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये नाटक कैसे चक्र चलता है, कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था? भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना? बाबा पूछते हैं याद आया, सभी को स्मृति आ गई कि हम सतयुग में देवता थे, अभी हमारी पूजा हो रही है। बाबा पूछ रहे हैं याद आया ना कि हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। आगे ये पता नहीं था हम सो पूज्य देवता थे, फिर हमने ही 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो, उनको कहानी के रूप में बताएंगे तो इंटरेस्ट आएगा, इसलिए बाबा कहते हैं उनको बोलो कहानी सुनो 84 जन्म की। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, कोई मनुष्य लिखता है अपनी कहानी तो क्या होता है, उसको बहुत टाइम लगता है अपनी बायोग्राफी लिखने में, लगता है ना, वो भी एक ही जन्म की। लेकिन बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तो बाबा कहते उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है, तुम एक मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो? वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं, वो भी कहते हैं अभी हमें ना ये फलाना अपनी बायोग्राफी लिख रहा है, वो लिखते लिखते कितने साल निकल जाते हैं फिर पब्लिश होता है। वो तो एक जन्म का बताते, छोटेपन में क्या क्या किया, ये भी अपनी कहानी बताते हैं। हम 84 जन्मों की कहानी लगा, एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण है तो इतने ब्राह्मणों की 84 जन्मों की कहानी बताते। तुम ही इस चक्र को जानते हो, इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते, और जो भी मठ पंथ धर्म आदि है वो हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। कब स्थापन होते हैं? शुरू से नहीं होते हैं, जब हमने भक्ति करना शुरू किया तब दूसरे धर्म स्थापित हुए। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था, तुम चैतन्य फूल थे। इसको कहा जाता है फूलों का बगीचा। पहुंच जाओ सभी सतयुग में, कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था, चैतन्य फूल थे, फिर वही कांटों का बगीचा हो जाता है, तो उसको बगीचा भी क्या, जंगल ही कहेंगे। इस समय सब कांटे बन गए हैं, फिर कांटों से फूल कैसे बनना है सो बाप बैठ बताते हैं। एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है, ये बहुत अच्छी होती है। स्टूडेंट लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो अभी हम सब क्या है, गॉडली स्टूडेंट बैठे हैं ना, तो हमारी लाइफ बेस्ट है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं, शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते, अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे, सोने की खानियां थी। अब याद करो सब, सतयुग में क्या क्या था। अभी वो खाली हो गई है, फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। अभी तो सोने की कीमत कितनी है, लोग सोने का खरीदने में भी सोचते हैं। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, पूरा विश्व एक भारत होता, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना, बाबा बता रहे ऐसे सोचो तो वंडर लगेगा कि बाबा कितनी बड़ी दुनिया स्थापित कर रहे हैं। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता, आता नहीं माना, बहुत महंगा है। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियां भरतू हो जाती है। कितनी भरतू हो जाती है, सोने की खानियां कितनी भरती होगी, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना, वहां खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। जैसे यहां मिट्टी की ईंटें बनती है, ऐसे वहां सोने की ईंटें बनती है। वहां सोने की ईंटें बनेगी तब तो सोने के महल बनेंगे, यहां तो मिट्टी की ईंटें भी मुश्किल है, माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, उसकी एक स्टोरी है माया मच्छंदर की। वो मत्स्येंद्र एक राजा था, उसको वो योगी बना, पहले तो त्याग कर दिया। जब वो महल में रहा तो धीरे धीरे वो अपने राजपाट और वैभवों में लिप्त हो गया। उसका गुरु उसका शिष्य एक था गोपीनाथ, उसने देखा कि मेरा तो गुरु जो है, मेरा राजा जो है, वो तो भोग विलास में लिप्त हो रहा है। तो उसने उनको वापस लाने के लिए, योगी रूप में लाने के लिए, त्यागी बनाने के लिए, वैरागी बनाने के लिए अलग अलग युक्तियां रची। वो अलग अलग युक्तियों का ड्रामा बनाते गए। जो लोग हैं आजकल बहुत स्टोरी बनाते हैं, वो उनकी एक एक विधि की एक एक स्टोरी बनाते हैं। ध्यान में देखा यहाँ तो सोना ही सोना है, तो वो लिप्त तो हो गया। वो तो ध्यान में था, जब ध्यान में बैठा तो सोना देखा, फिर यहाँ आया तो था नहीं, तो फिर वो राजबाग में लिप्त तो हो गया। बरोबर सतयुग में सोना होगा, यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती है। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती है, उतनी वहां सोने की ईंटें मुफ्त मिलती है। कितना कॉन्ट्रास्ट है। माउंट आबू में तो पैसे से भी मुश्किल है ईंटें। रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए? नई दुनिया में उच्च पद पाने का यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे? बाबा ने बहुत अच्छा बताया, जब इतना बाबा उच्च बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं, संपन्न दुनिया में ले जाते हैं, तो क्यों नहीं इतना पुरुषार्थ करना चाहिए? यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे? बाप कहते हैं, पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इसको छोड़ दो, पुराने संबंधों को निभाओ नहीं, छोड़ दो ऐसा नहीं कहते। सिर्फ बुद्धि एक बाप से लगाओ, बुद्धि उनमें ना रहे, मोह उसमें ना रहे। बुद्धि योग एक बात से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ ही है मुझे याद करो। और मन मना भव का अर्थ क्या है? मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को और विष्णुपुरी को याद करो, अर्थात मध्याजी भवम। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो, एक माशुक परमपिता परमात्मा के हो। वो तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करती हैं। तुम रूहानी आशिक, रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो। तो एक ही बार बनते हैं तो अच्छी रीति याद करना पड़े। बाकी तो सब मनुष्य हैं, जिस्मानी आशिक माशूक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। जब बारिश आती है तो हरियाली हो जाती है ना, तो बाबा ज्ञान से कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई पतित होगा ही नहीं, सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, खानियां भी हीरे जवारों की नई बन जाती है। प्योर सोना होगा ना तो खानियां भी और भरेगी। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए, बाबा मंथन करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें सोचो तो क्या होगा, बहुत खुशी में रहेंगे। सन्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल तुम कहां भी बैठो, कहां भी बैठो माना कहां याद का टाइम नहीं मिलता है तो क्या करो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे, वहां तो याद करने की फुर्सत है। कईयों को तो स्नान करने में एक घंटा लगता है, तो एक घंटा तो बाबा की याद रहेगी ना, इसलिए बाबा कहते हैं वहां तो फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? पहले कभी सुना, भक्ति मार्ग में सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। भागीरथ कौन, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो जट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के वानप्रस्थ अवस्था में भी लास्ट में, बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। बाबा ने कहा कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ, बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। अभी तुमको ये ज्ञान मिला है, बाप बैठ समझाते हैं, वो भी सन्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं, तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि जिसको याद करते हैं, भक्ति में इतनी पूजा करते हैं, इतने पुकारते हैं, वो आकर हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं। आईसीएस का इम्तिहान पढ़ते हैं तो कितना बड़ा नशा होता है, नशा होता है ना कि अरे हम तो इतना बड़ा एग्जाम पास कर रहे हैं, फिर इतने बड़े ऑफिसर बनेंगे। वो होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है, ये भगवान की पाठशाला है, वो आईसीएस से भी बड़ी पाठशाला है, उससे भी बड़ा एजुकेशन है ये। अब प्रश्न उठता है, भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? सिवाय एक निराकार के सब तो श्री कृष्ण को मानेंगे नहीं। इसलिए सर्व आत्माओं के पिता का चित्र बताया ना, कि कैसे हर धर्म वाले उसको बिलीव करते हैं, श्री कृष्ण को या और देहधारी देवताओं को या और धर्मात्माओं को सभी तो नहीं मानेंगे, निराकार को हर धर्म एक्सेप्ट करता है। सभी आत्माओं का बाप वो निराकार परम पिता परमात्मा है, वो सदैव परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो, तुम जानते हो, वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं। तो अभी हम क्या बन रहे हैं? रंक से राव बन रहे हैं। भारत अब रंक है ना, माना गरीब है। फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं, विनाश का भी साक्षात्कार हुआ है, स्थापना का भी किया है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अभी देखो कॉन्ट्रास्ट, बाबा कहते भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है, राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, किसी राजा के घर में जन्म हुआ लेकिन तुरंत शरीर छोड़ दिया, उसकी आयु थोड़ी थी, थोड़ा सुख लिखा था। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। माना बाबा का भाव है कि राजा के घर में तो जन्म हुआ लेकिन जरूरी नहीं है कि धन का सुख मिला तो तन का भी सुख मिले, ये दोनों नहीं बातें हो सकती है। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो, अभी देखो लास्ट बाबा सरेंडर करवा रहा है, सारा सरेंडर कर दो बाबा को फिर बाबा छुट्टी देगा सब कुछ। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। जो बलियार जाएगा वही तो राजा ही पाएगा ना। भारत को महादानी खंड कहा जाता है, जितना भारत में दान पुण्य होता है इतना दूसरे देशों में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ दान पुण्य का महत्व समझाया जाता है कि आप इतना दान करेंगे तो ये आपको अगले जन्म में मिलेगा, अगर ये ज्यादा ये करेंगे हॉस्पिटल बनाएंगे तो अगले जन्म में निरोगी काया मिलेगी, तो ये यहाँ भारत में ही बताया जाता है। भारत को महादानी खंड कहा जाता है, यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वो फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए दान देते हैं। अब तुम, अब ये कंडीशन है, सब छुट्टी है, घूमो फिरो खाओ पियो मौज मनाओ सब छुट्टी है, लेकिन पहले ये कंडीशन है। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, लेकिन सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूं, आपको ही याद करता हूं। ये रोज मंत्र पक्का करो कि बाबा मैं आपका हूं और आपको ही याद करता हूं। दिल से सरेंडर करते हैं, जो दिल से सरेंडर करते हैं बाप कहते हैं, उसको बाबा क्या कहता है जो दिल से सरेंडर करता है, तो बाप कहते हैं बल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। सारी छुट्टी मिली लेकिन कंडीशन से मिली है। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वो बनते हो, फिर से विश्व के मालिक बनते हो। बाप समझाते हैं, अभी ये आज का मंत्र, मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पूरी मुरली का अंडरलाइन, पहली पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा न रहे। आज का वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। उसका क्लेरिफिकेशन है, बेहद के वैरागी वही बन सकते कौन बन सकते? बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने संसार में रहेंगे, दूसरों के संसार में जाएंगे ही नहीं। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। जब बाप में ही संसार है तो फिर बाप ही दिखाई देगा, कोई संसार का और रिलेशन है ही नहीं तो कौन दिखाई देगा। स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। ये अव्यक्त इशारे। इस महीने का टॉपिक चल रहा है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। बहुत अच्छा बाबा ने इसमें बताया है ज्वाला स्वरूप कैसे बने, शक्तिशाली याद कैसे करें। इसका बहुत अच्छा है, जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, दुश्मन वार न करे। इसके लिए पुराने समय में राजाओं के बड़े बड़े किले होते थे। तो जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। एक कमरा नहीं बनाओ, योग का एक कमरा नहीं बनाओ, लेकिन पूरा किला बनाओ जिसमें हम भी सेफ रहें, साथी भी सेफ रहें और अन्य आत्माएं भी सेफ रहें। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। ओम शांति।